SBS हिंदी।
नामवर सिंह नहीं रहे। नामवर सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो अपनी तरह के अकेले साहित्यकार थे पूरे हिंदी साहित्य में। वो अपनी तरह के अकेले व्यक्ति थे पूरे हिंदी साहित्य के परिदृश्य में। उनका होना एकदम अलग अनुभूति था और वो चले गए हैं। मेरे साथ उनके शिष्य, उनके अजीज़ भरत हैं, जो बहुत लंबा समय जिन्होंने नामवर सिंह जी के साथ बिताया। भरत जी, आपका स्वागत है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
भरत जी, आपके लिए ये एक पर्सनल लॉस भी होगा नामवर का जाना।
जी।
कुछ बताएंगे कब से बीमार थे और कैसे उनका निधन कैसे हुआ?
नामवर सिंह जी की बीमारी से पहले मैं उनकी जीवन चर्या के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिससे हमें ये पता चले कि एक इतनी बड़ी उम्र का व्यक्ति और इतना सजग कैसे रहा। जब भी मैं उनके साथ में 6 साल तक मैं उनके घर पे ही रहा, और रोजाना सुबह वो 5 बजे जगने के बाद में एक्सरसाइज के लिए चले जाते थे, और उस दौरान सोता था और मैं 7 बजे के आसपास मैं जगता था जब वो एक्सरसाइज करके वापस आते थे। कभी ट्यूबलाइट नहीं शुरू करते थे, टॉर्च की रोशनी से बाहर निकल जाते, तो वो ये कहते थे कि भाई तुम्हारी पीढ़ी देर तक सोती और हमारी पीढ़ी बहुत जल्दी जाग के ये ना सारी बाहर की दिनचर्या कर देती है। तो मैं उनसे कहता था कि सर आप जल्दी जागते हो लेकिन जल्दी सोते भी तो हो, और मैं देर तक जागता हूँ इसलिए सुबह देर तक सोता हूँ। तो मैं उनसे कई बार पूछा, मैंने कहा सर अब आपकी उम्र हो गई है और अब आपको बाहर घूमने के लिए ऐसे नहीं जाना चाहिए, और आप जो वेसाटन के लिए जाते हैं तो उससे आपके बहुत जो महत्वपूर्ण काम है वो अटक जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण काम पे वो काम कर रहे थे, वो भारतीय साहित्य का इतिहास है, इस पे आज भी हिंदी के इतर भारत के सभी भाषाओं पे वैसा इतिहास लिखा नहीं गया है। नामवर जी के जाने के बाद में भारतीय साहित्य का इतिहास का कार्य कहीं कहीं अधूरा रह गया, जिसमें कोंकणी, गोवा की सारी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, पूर्वोत्तर, तो जो नामवर सिंह जी की जीवनचर्या और बाहर भारत में घूमने की उनकी परंपरा थी या उनकी आदत थी, वो उन्होंने उनको जीवट बनाया। और पिछले 3-4 साल से जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा, जिससे वो उन्होंने अपने बाहर जाने की इस आदत को उन्होंने रोक दिया, और उसको आदत को रोकने के बाद में वो कहीं कहीं उनकी तबीयत गड़बड़ाने लगी, और पिछले 2 सालों के दौरान उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण भी वो उस तरीके से अपनी एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे थे, और वो अपने घर पे दूसरी मंजिल पे रहते थे, और कहीं कहीं उनको एक दिन रात को पैर में बाथरूम में जाते हुए चोट आ गई थी। ये ना घटनाक्रम तकरीबन जनवरी के 2 सप्ताह का है। उसके बाद में करीबन 1-1.5 महीने तक वो एम्स में रहे, और आज ये सुबह मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिली कि आज नामवर जी नहीं रहे। ये केवल मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति नहीं, ये पूरे भारत के लिए और हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति।
आपको क्या लगता है भरत, क्या छोड़ गए हैं नामवर?
नामवर जी के बारे में अगर हम जानेंगे तो जब नामवर जी हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, MA के विद्यार्थी के दौरान ही उन्होंने पहली बार एक छोटी सी किताब लिखी, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। एक ऐसा बनारस हिंदी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जिसने पहली बार ये कहा कि हिंदी का जो विकास है या इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति न केवल संस्कृत से हुई बल्कि भारत की वो लोक भाषाएं अपभ्रंश और अव्वल थी जिससे आज की हिंदी हमारे सामने है, और ये हिंदी अमीर खुसरो की हिंदी रही, ये हिंदी मेरठ के बेल्ट में रहने वाली हिंदी रही, और ये हिंदी राजस्थान की अपभ्रंश और अव्वट और बाकी लोक बोलियों से रही। तो एक MA के उस विद्यार्थी ने पहली बार हिंदी कहाँ से पनपी वो बताई। एक ऐसा शिक्षक जिसने पहली बार ये कहा कि हिंदी में नई किताबों का संचार होना चाहिए, और जब वे चैनन व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम केवल पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा हम नया पाठ्यक्रम भी बनाएंगे, और वो उस पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने स्वयं एक पुस्तकालय की स्थापना की, एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और जो नामवर जी के आने के बाद में ही हिंदी में झूठा सच पढ़ाया जाने लगा। नामवर जी के आने के बाद में नागार्जुन पढ़ाए जाने लगे, और नामवर जी के द्वारा संपादित आलोचना की उनकी जो मासिक पत्रिका थी उसमें अगर नामवर जी की कलम चल जाती, सही कहा जाता कि जिसपे नामवर जी ने लिख दिया वो हिंदी का साहित्यकार हो गया, और साहित्य के प्रति उनकी रोजाना की ललक रोजाना 8 घंटे वो अड़ते थे, रोज मेरे को सुबह ये बता देते थे कि ये भरत ये जो सेमिनार है EPW है इन सभी मैगजीनों में ये आलेख आए होंगे। तो एक जो 80-90 साल का व्यक्ति इंटरनेट की दुनिया से भी कभी अछूता नहीं रहा, हिंदी की दुनिया से भी कभी अछूता नहीं रहा, संस्कृत की दुनिया से भी अछूता नहीं रहा, और मणिपुर से लेके तमिलनाडु तक, कर्नाटका के थिम्पू अवार्ड से लेके भारत भारती पुरस्कारों तक हर जगह पे नामवर जी ने अपनी पहचान बनाई। शायद ही हिंदी के इतिहास में 50 साल तक एक छत्र राज करने वाला ऐसा आलोचक हमें आगे कभी देखने को कभी नहीं मिलेगा।
अच्छा, नामवर जी की आलोचना भी उतनी ही तीखी होती थी जितने वो खुद तीखे आलोचक थे, उनको झेलनी भी उतनी तीखी आलोचना पड़ती थी, वो खुद कैसे देखते थे इस बात को?
नामवर जी के मैं इसी बात पे छोटा सा वाकया आपको कहना चाहूंगा। नामवर जी ने 1985 के बाद में ज्यादा कोई बेहतरीन लेखक के तौर पर उन्होंने नहीं लिखा, तो मैं उनसे ये बार बार सवाल करता था। मैंने कहा सर आपने जितना भी महत्वपूर्ण लिखा है आपकी किताबें आपकी पुस्तकें आपकी आलोचना वो 1985 और 90 के दशक के पहले की है, उसके बाद में आपकी ऐसी रचना क्यों नहीं आई? तो हमें एक ही बात कहते थे कि भारत एक वाचिक परंपरा का देश है, यहाँ पे लेखन की बजाय लोगों को सुनने की ज्यादा आदत है, और जब सुनने की आदत होती है तो उन्हें सुनाने की भी बड़ी आदत होती है। इसलिए अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो उस बात के लंबे अर्थ भी निकाले जाते हैं, मीडिया के जरिए से भी कहीं चीजें आती है और वो तीखी बहसों के रूप में आती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। नामवर जी ने अपने एक भाषण में कहा कि जो नामवर सिंह ने जो भी अच्छा लिखा वो 1985 तक लिखा, इसलिए उन किताबों को सहेज के रख देना चाहिए। और नामवर जी ने खुद कहा कि जो मेरी पहली किताब थी बकरम खुद, उसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा बाद का लेखन ज्यादा बेहतरीन है उस लेखन की बजाय, इसलिए हमने उसे पुनः प्रकाशित करने के बारे में मैंने उतना नहीं सोचा। हो सकता है कि मेरे विद्यार्थियों या मेरे सभी पाठकों को वो चीज अच्छी लगे। वैसे ही गालिब की जो रचनाओं के अच्छे शेर थे उनको एक साथ इकट्ठा किया और दीवाने गालिब बना, और जो मीर का जो दीवान था उसमें मीर के सारे शेरों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया था, इस कारण से जो मीर से बड़े शायर गालिब बने। वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत का जो साहित्य है वो उनका प्रारंभिक साहित्य बहुत अच्छा है, बाद का साहित्य उतना बेहतरीन नहीं है। तो हमारे हिंदी के पाठकों को जो बेहतरीन साहित्य वो पढ़ना चाहिए और जो अच्छा नहीं है वो छोड़ देना चाहिए, वो चाहे हमारा हो, चाहे गालिब का हो, चाहे मीर का हो, चाहे पंत का हो या किसी भी और का। तो उन्होंने कहा कि जो बेहतरीन नहीं है वो कई बार कूड़े के समान होता है, और जो अच्छा है उसे अपना लेना चाहिए हर अच्छे व्यक्ति की तरीके से। तो जो मीडिया और उनके आलोचकों ने कहा, आमवर सिंह ने कहा कि सुमित्रा नंदन पंत का साहित्य कूड़ा है, इस तरह की कहीं बहसों के रूप में केवल वाचिक परंपरा से उनके ऊपर तीखे सवाल आते रहे। वो अगर जितने संस्कृत के प्रखंड पंडित थे वैसे ही भोजपुरी के थे, और वो जब हिंदी की बहसों में जाते थे तो वो कहते थे कि संस्कृत को पढ़ना चाहिए क्योंकि भारत की परंपरा है, तो उसको लेके हिंदी के कुछ मार्क्सवादी आलोचक उन्हें बुला लेते थे और उनको ये वो उम्मीद करते थे कि शायद ये किसी तरीके से पुरानी परंपराओं की आलोचना करेंगे, लेकिन वो वहां पे दूसरी बात कर जाते थे। तो जो नामवर जी जहां से जो अच्छा है उसे अपनाने की बात करते थे, तो जहां जो खराब है उसको छोड़ देते थे, इस कारण से वो आलोचनाओं के भी शिकार हुए। लेकिन उनसे मैं पूछता था कि सर ये आलोचनाओं के तौर पे आप बार बार शिकार होते, इसका क्या सवाल है, ऐसा आप क्यों करते? तो वो कहते थे थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, वाद विवाद और संवाद की परंपरा भारत में स्थापित होगी तब हम एक बेहतरीन भारत के तौर पर आएंगे, और कभी भी एक एकल धारा नहीं बहनी चाहिए, वो पक्ष होने चाहिए जिससे एक तीसरा बेहतरीन पक्ष उपजे। और इसी धारा के कारण नामवर जी आज भी एक बेहतरीन आलोचक के रूप में सभी भारतवासियों के दिलों में बसे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, नामवर इंसान भले ही चले गए हों लेकिन नामवर सब दिलों में और हिंदी के एक स्तंभ के रूप में हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए भरत
जी, बहुत बहुत आपका आभार।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।